नमस्कार भारत 27 नवंबर इतवार। तकरीबन 5 दशकों तक क्यूबा के जीवन के हर पहलू में मौजूद फिदेल कास्त्रो नहीं रहे। आज होगा अंतिम संस्कार। क्यूबा में 9 दिनों का राष्ट्रीय शोक। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। क्या भारत के साथ रिश्तों में हो सकती है बेहतरी?
जनरल बाजवा एक स्टेप आगे जाएं और जो इनकी मिलिट्री कमांडर DGMOs की जो बातचीत हर मंगल होती है इसमें कुछ तेजी लाएं।
और नोटबंदी पर विपक्ष के बीच पड़ी दरार। नीतीश कुमार का जदयू हुआ भारत बंद कार्यक्रम से अलग।
उसमें हमारे दल का शुरू से स्टैंड था नोटबंदी के खिलाफ। जो भी कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम से जनता दल यूनाइटेड अलग रहेगी। आज हमारा पार्टी के रूप से अधिकृत अभियान आया है।
सब आगे, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, दिलनवाज पाशा से। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की मौत के बाद देश में 9 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। फिदेल कास्त्रो का शनिवार को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार एक निजी समारोह में हवाना में होगा। अगले सप्ताह उनकी राख को देश के कोने कोने में ले जाया जाएगा और 4 दिसंबर को उसे दफन कर दिया जाएगा। हवाना में मौजूद BBC संवाददाता के मुताबिक कुछ लोगों ने जहां कास्त्रो की मौत पर राहत की सांस ली है, वहीं आम क्यूबावासियों ने गम का इजहार किया है। दुनिया भर के नेता फिदेल कास्त्रो को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक न्याय की एक मजबूत आवाज थे। उन्होंने कहा कि कास्त्रो को क्यूबा को शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता में आगे बढ़ाने के लिए याद किया जाएगा। चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा है कि उनके देश ने एक अच्छा दोस्त खो दिया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कास्त्रो को एक युग का प्रतीक बताया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जुमा ने कहा है कि कास्त्रो दुनिया भर में शोषित लोगों की आज़ादी की आवाज़ बुलंद करते रहे। पोप फ्रांसिस ने उनकी मौत पर दुख जाहिर करते हुए प्रार्थना की है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि कास्त्रो ने बहुत लोगों के लिए उम्मीदें पैदा की। उन्होंने कहा,
फिदेल कास्त्रो a été une grande figure du 20e siècle.
फिदेल कास्त्रो 20वीं शताब्दी के एक महान नेता थे। क्यूबा की क्रांति से उन्होंने बहुत उम्मीदें पैदा की थीं, कुछ समय के लिए लातिन अमरीका के बहुत से लोगों के लिए भी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वो एक समूचा संदर्भ भी थे। कुछ निराशाएं भी थीं, लेकिन वो हमेशा ही गर्व के साथ क्यूबा की बाहरी दबाव से रक्षा करना चाहते थे। वहीं अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक बर्बर तानाशाह बताते हुए कहा है कि उन्होंने अपने ही नागरिकों का दशकों तक दमन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वो क्यूबा के लोगों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। सीरिया में सरकारी मीडिया का कहना है कि सरकारी सैन्य बलों ने अलेप्पो में विद्रोहियों के कब्जे वाले सबसे बड़े और अहम जिले को नियंत्रण में ले लिया है। सरकारी सैन्य बल अब मासाकेन हनानो जिले में बमों और बारूदी सुरंगों को हटाने में जुटे हैं। सीरिया की सरकार का कहना है कि गुरुवार को उत्तरी सीरिया में 3 तुर्क सैनिकों की मौत के लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं तुर्की जिम्मेदार है। तुर्क सैनिकों की मौत पर पहले आधिकारिक बयान में सीरिया के उप विदेश मंत्री फैसल अल मकदाद ने कहा है कि सैनिकों की मौत सीरिया की जमीन पर हुई है। उन्होंने तुर्की से अपने सैनिकों को सीरिया से वापस बुलाने का आह्वान भी किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन प्रांत में वोटों की दोबारा गिनती को फर्जीवाड़ा कहा है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी रेडियो का पहला कार्यक्रम नमस्कार भारत। फैसल मोहम्मद अली से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की मौत से। कास्त्रो का अंतिम संस्कार स्थानीय वक्त के मुताबिक शनिवार को राजधानी हवाना में किया जाएगा। राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने उनकी मौत की सूचना शुक्रवार को दी थी। अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को सैंटियागो ले जाकर दफनाया जाएगा। उनकी मौत पर क्यूबा में 9 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस बीच दुनिया भर से उनकी मौत पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिदेल का भारत से लंबा नाता रहा है। वे न सिर्फ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहुत इज्जत किया करते थे बल्कि 1983 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली भी आ चुके थे। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने BBC को बताया कि जब वो कास्त्रो से मिले तो उन्होंने नेहरू से मिलने का किस्सा कुछ یوں بتایا۔ فیدل نے نٹور سنگھ سے کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جب میں نیو یارک کے ایک ہوٹل میں بڑی مشکل سے جگہ پا سکا تو سب سے پہلے مجھ سے ملنے جو شخص آیا وہ کون تھا؟ مہان جواہر لال نہرو۔ میری عمر اس سمے 34 سال تھی۔ انتراشٹریہ راجنیتی کا کوئی تجربہ نہیں تھا میرے پاس۔ نہرو نے میرا حوصلہ بڑھایا جس کی وجہ سے مجھ میں غضب کا آتم وشواس جاگا۔ میں تا عمر نہرو کے اس احسان کو نہیں بھول سکا۔ ہمارے ساتھی واتسل رائے نے نٹور سنگھ اور بھارت کے دو انیہ نیتاؤں سیتارام یچوری اور ڈی راجا سے فیدل کیسترو کے بارے میں بات کی۔
بھارت کی راجدھانی دلی اور کیوبا کی راجدھانی ہوانا کے بیچ قریب 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن فیدل کیسترو اس دوری کو پاٹنے میں کامیاب رہے۔ مثال سامنے ہے۔
کیسترو تو ایک ہی تھا، کیسترو واز کیوبا، کیوبا واز کیسترو، اور اس کو دنیا بھولے گی نہیں۔
صرف کیوبا کا لاس نہیں ہے، انٹائر دنیا کا بہت لاس ہے۔
ہی ریمینڈ اینڈ ریمینز بگ ریولیوشنری سورس آف انسپریشن، وی ول آل مس ہم۔
وچار دھارا الگ، دل الگ، لیکن ذکر فیدل کیسترو کا ہو تو پورو ودیش منتری نٹور سنگھ ہو، سی پی آئی نیتا ڈی راجا ہو، یا پھر سی پی ایم کے مہا سچیو سیتارام یچوری، ان کی بھاوناؤں میں زیادہ انتر نہیں ملتا۔ بھارت کے ودیش منتری رہے نٹور سنگھ کئی بار فیدل کیسترو سے ملے تھے۔ سال 1983 میں بھارت میں ہوئے گٹ نرپیکش سمیلن کی کئی یادیں ان کے ساتھ ہیں۔ نٹور سنگھ انہیں دنیا کے قداور نیتا اور بھارت کے قریبی دوست کے طور پر یاد کرتے ہیں۔
چھوٹا سا دیش امریکہ سے دبایا نہیں گیا 60 برس، اور کیسترو کی جو چھوی تھی وہ انتراشٹریہ تھی۔ خیر وہ بیان دیتے تو دنیا بھر میں چھپتا تھا، اور ان کی لوگ بڑی عزت کرتے تھے جہاں کہیں جائیں، اور خاص کر ان کو بھارت ورش سے تو بہت ہی محبت تھی۔
فیدل کیسترو کے آلوچکوں کا کہنا ہے کہ ان کی خراب آرتھک نیتوں کے کارن کیوبا کی ارتھ ویوستھا پنگو ہو گئی تھی، لیکن نٹور سنگھ اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں،
امریکہ تو لگا لیا تھا بلاکیڈ، کچھ جا نہیں سکتا تھا وہاں، نہ دوائی جاتی ہے، نہ ناچ جاتا، نہ کچھ جو کھانے کے پینے جاتا، تو وہ میں کیا کرتا وہاں۔ اس کے باوجود 100% تو لوگ ایجوکیشن ہے وہاں، ہر ایک کسی کو فری میڈیکل ایڈ ملتی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں کمی نہیں تھی، ان کے اپنے جو ورودھی تھے ان کو جیل ویل نہیں کی۔
بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے فیدل کیسترو کو شردھانجلی دیتے ہوئے انہیں 20th century کے سروادھک پربھاوشالی لوگوں میں سے ایک بتایا ہے۔ سال 1978 میں کیوبا کی راجدھانی ہوانا میں پہلی بار فیدل کیسترو کا بھاشن سننے والے سی پی آئی سانسد ڈی راجا بھی کہتے ہیں کہ ان کی گنتی سروکالک مہان نیتاؤں میں کی جائے گی۔ سکشا اور چکتسا کے چھیتر میں فیدل کیسترو نے جو کام کیا اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ڈی راجا کہتے ہیں،
one of the all time great leaders, no doubt the world will celebrate him as one of the greatest personalities of 20th century. Selfish nahi hai, janta ka neta hai, jan neta hai, duniya ka rajneeti par bahut contribution kiya, non alignment movement mein madam indira gandhi ka sath acha kaam kiya۔
Raja kehte hain ki fidel castro ki neetiyan aur unki soch aaj bhi prasangik hai۔ aaj poonjivadi arthvyavastha mushkil mein hai، اس کا وکلپ کیا ہو سکتا ہے؟ فیدل کیسترو نے ہمیشہ اس کے بارے میں سوچا۔ اپنی سوچ اور اپنے کام کے دم پر فیدل کیسترو نے جو مقام حاصل کیا اسے ہمیشہ سمان کے ساتھ دیکھا جائے گا۔
یہ تھے واتسل رائے۔ فیدل وہ نیتا تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکی گپت ایجنسی سی آئی اے نے 600 بار انہیں قتل کروانے کی کوشش کی تھی۔ 3 امریکی راشٹرپتیوں نکسن، فورڈ اور ریگن کے پرشاسن میں ودیش معاملوں پر صلاح کار رہ چکے اسٹیفن ہال پر کہتے ہیں، امریکہ میں لگاتار اس بات کی کوشش ہوتی رہی کہ کسی طرح انہیں ختم کروا دیا جائے۔ کوشش کی گئی کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ ان کی داڑھی غائب ہو جائے۔ اسی طرح کے پلاٹ تیار ہوتے رہے، کیونکہ وہ شیت یدھ کی سچائی کو امریکہ کے بالکل پاس لے آئے تھے۔ سوویت روس ہمارے بغل میں ہمارے خلاف رڑنیتی تیار کر سکتا تھا، حالانکہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ ودیش معاملوں پر امریکی پرشاسن میں صلاح کار رہ چکے اسٹیفن ہالٹر کے شبد۔ فیدل کی موت پر کچھ جگہوں پر کچھ لوگوں نے خوشیوں کا اظہار بھی کیا، جیسے امریکہ کے میامی شہر میں کیوبا سے بھاگ کر آئے لوگ۔ امریکہ کے نو نرواچت راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے تو فیدل کو بربر تانا شاہ تک کرنا کہہ ڈالا۔ سنتے ہیں امریکہ کے اخباروں نے وش پٹل پر دشکوں تک بنے رہنے والے نیتا کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سنا رہے ہیں نیو یارک سے سلیم رضوی۔
अमरीका के समाचार पत्र आज क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो के निधन और उनसे जुड़ी खबरों और चर्चाओं से अटे पड़े हैं। अमरीका और क्यूबा दो ऐसे पड़ोसी देश जिनके बीच 50 वर्षों का अरसा एक दूसरे से दुश्मनी में बीत गया। सन 2014 में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच संबंध कुछ हद तक बहाल करने की कोशिश की। दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानी में अपने अपने दूतावास फिर से खोले। तो दोनों देशों के बीच इसी इतिहास के साथ आज अमरीका के अखबारों में फिदेल कास्त्रो और उनकी क्रांति का क्यूबा और क्यूबा के लोगों पर पड़ने वाले असर पर ज्यादा चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पन्ने पर बड़ी सी हेडलाइन लगाई है जिसमें लिखा है, फिदेल कास्त्रो एक क्रांतिकारी क्यूबाई जिसने अमरीका को ललकारा, 90 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास का जिक्र करते हुए अखबार ने इस बात पर भी चर्चा की है कि किस तरह फिदेल कास्त्रो शीत युद्ध को पश्चिमी गोलार्ध में ले आए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बात पर भी विस्तृत चर्चा की गई है कि कैसे फिदेल कास्त्रो ने 11 अमरीकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान अमरीका के प्रति अपनी क्रांतिकारी नीतियों के तहत ललकार जारी रखी। ये भी चर्चा की गई है कि क्यूबा में अब फिदेल कास्त्रो के बाद उनके छोटे भाई और मौजूदा राष्ट्रपति राउल कास्त्रो देश को किस ओर लेकर जाएंगे। अमरीका के कई समाचार पत्रों में इस बात पर भी चर्चा की जा रही है कि अमरीका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या राष्ट्रपति ओबामा की क्यूबा के मामले में जारी नीति को बदल देंगे। चुनावी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का वादा तो किया था। कुछ समाचार पत्रों में हेडलाइन ऐसी दी गई है जिससे दोनों देशों के बीच तल्ख इतिहास की झलक भी दिखती है। वॉशिंगटन पोस्ट में पहले पन्ने पर बड़ी सी और सख्त हेडलाइन लगाई गई है। हेडलाइन में कहा गया है, क्यूबाई तानाशाह विश्व के क्रूर शासकों में से एक 90 वर्ष की उम्र में मर गया। समाचार पत्र में कास्त्रो की मौत पर अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान पर भी चर्चा है जिसमें ओबामा ने कहा कि फिदेल कास्त्रो के दौर का क्यूबा की जनता पर पड़ने वाले असर के बारे में इतिहास ही फैसला करेगा। ओबामा के इस बयान पर कई रिपब्लिकन नेताओं ने उनकी आलोचना की है। क्यूबाई मूल के दो रिपब्लिकन नेता सेनेटर टेड क्रूज और सेनेटर मार्को रूबियो ने ओबामा के बयान को नरमी वाला बताया है और कहा है कि राष्ट्रपति ओबामा ने फिदेल कास्त्रो के दौर में कथित तौर पर हजारों लोगों को प्रताड़ित करने और मार डालने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। कुछ समाचार पत्रों में फिदेल कास्त्रो और नेल्सन मंडेला की एक साथ तस्वीर को भी छापा गया है और न्यूयॉर्क डेली न्यूज अखबार में एक लेख में फिदेल कास्त्रो को नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने वाला दुनिया का महान योद्धा बताया गया है। यूएसए टुडे समेत कई समाचार पत्रों में फिदेल कास्त्रो पर कथित तौर पर कई बार किए गए जानलेवा हमलों का भी लेखा जोखा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने कास्त्रो को कई बार जान से मारने की कोशिश की थी। लॉस एंजलस टाइम्स और अन्य कई अमरीकी समाचार पत्रों में फ्लोरिडा में रहने वाले क्यूबाई मूल के कुछ अमरीकी लोगों के फिदेल कास्त्रो की मृत्यु पर जश्न मनाने को चित्र के साथ सुर्खी बनाया गया है। अमरीका के टीवी न्यूज चैनलों पर भी सुबह से ही फिदेल कास्त्रो की मौत और उससे जुड़े विषयों पर चर्चा जारी है। फ्लोरिडा में क्यूबाई मूल के कुछ लोगों द्वारा जश्न मनाए जाने के दृश्यों को भी बार बार दिखाया जा रहा है। अब इस बात पर ज्यादा चर्चा हो रही है कि नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा और अमरीका के रिश्तों पर किस हद तक मौजूदा अमरीकी नीति से हट के चलेंगे।
ये थे न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी, सुना रहे थे वहां के अमरीका के अखबारों में क्या छपा है फिदेल कास्त्रो की मौत पर। फिदेल कास्त्रो ने जितने दिनों क्यूबा पर शासन किया उस दौरान अमरीका में 9 राष्ट्रपति आए और गए। बराक ओबामा के काल में क्यूबा और अमरीका के रिश्ते फिर से बहाल हुए, विमान सेवा शुरू हुई, दूतावास खुले और व्यापार के संबंध भी बेहतर हुए। हालांकि तब तक देश की सत्ता की बागडोर फिदेल कास्त्रो के हाथों से उनके छोटे भाई राउल कास्त्रो के पास चली गई थी। BBC संवाददाता वात्सल्य राय ने ही अमरीका की डेनवर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर वेद नंदा से बात की और पूछा कि अमेरिका फिदेल कास्त्रो को कैसे याद करेगा।
अमेरिका उनको याद करेगा इसलिए कि अमेरिका के साथ उनके संबंध बहुत कटरे रहे और अमेरिका में फ्लोरिडा में जो लोग क्यूबा से आए वो आज बहुत खुशी मना रहे हैं, किंतु इस समय अमेरिका में भी दोनों तरह के लोग हैं। बहुत हैं जो सोचते हैं कि कास्त्रो ने क्यूबा में बहुत अच्छा काम किया, मेडिकल सप्लाइज का, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, किंतु वहाँ के सोवियत यूनियन के संबंध जिसमें कम हुए तो क्यूबा की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी।
2008 में जब कास्त्रो ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया उसके बाद से क्यूबा और अमेरिका के संबंधों में बदलाव आया। अब उनके निधन के बाद आपको क्या लगता है कि ये संबंध और बदलेंगे?
प्रेसिडेंट ओबामा ने जो रिफॉर्म के बारे में शुरू किया और संबंध अच्छे बने इनके छोटे भाई के साथ, वो अब आगे ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं उनके साथ किस ढंग से वो आगे चलेंगे ये कहना कठिन है, किंतु एक बात अवश्य कही जा सकती है कि अमेरिका के साथ जो संबंध शुरू हुए हैं रिफॉर्म के, वो खत्म नहीं हो सकते। और क्यूबा में प्राइवेटाइजेशन, क्यूबा में इकोनॉमिक बदल, क्यूबा में पॉलिटिकल कितनी छूट आएगी, इंडिपेंडेंट लोग होंगे, ये कहना कठिन है, किंतु ये रिफॉर्म का जो काम शुरू हुआ है वो खत्म नहीं होगा।
अमेरिका के डेनवर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर वेद नंदा।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्ज पर।
और अब रुख करते हैं पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाया गया है। 28 नवंबर को मौजूदा सेना प्रमुख राहिल शरीफ रिटायर हो रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा उनसे सेना की कमान अपने हाथों में लेंगे। जनरल बाजवा पाकिस्तान के 16वें सेना प्रमुख होंगे। वात्सल्य राय ने पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार मरियाना बब्बर से बात की और सबसे पहले पूछा कि क्या जनरल बाजवा की नियुक्ति चौंकाने वाली थी।
ना चौंकाने वाला है और ना कोई उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको चार नाम दिए गए थे जनरल राहिल शरीफ की तरफ से सीनियरिटी की बेसिस पे। वेलकम किया गया है पाकिस्तान में, खासकर जब इनकी सीवी सामने आई कि ये एक कमांडर या एक जनरल की बात नहीं होती है, ये इंस्टीट्यूशन की बात होती है। जो कामयाबी है राहिल शरीफ की जैसे वो जा रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन आर्मी को उसने बड़ा ताकतवर किया है, मिसाल बनाया है कि एक फौज जिसको सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर आता था, उसने दहशतगर्दी के खिलाफ भी कितने बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन्स किए हैं और उसमें काफी कामयाब हुए हैं।
मैं बात करना चाहूंगा जनरल बाजवा की खूबी की। जैसे आपने कहा कि उनका जो सीवी सामने आया है उससे लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने पाकिस्तान की रावलपिंडी में जो 10 कोर है उसको हेड किया है, ये बहुत बड़ा कोर है। मजे की बात तो ये है कि जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा है तो इस कोर ने टेक ओवर किया है। दूसरी ये कि उन्होंने कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बहुत दिन गुजारे हैं और मिलिटेंसी के खिलाफ जो ऑपरेशंस हुए हैं उनमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। जैसे ये कहते हैं एक हार्डेंड कमांडर होगा और वही जनरल बाजवा में नजर आ रहा है।
पाकिस्तानी सेना के लिए मौजूदा वक्त जो है बड़ा चुनौती भरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सेना अभियान चला रही है। दूसरा, अमेरिका के साथ तालमेल बनाने की भी एक चुनौती है। तीसरा, भारत से लगी हुई जो सीमा है उस पर भी तनाव लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में इनके लिए आप कितनी बड़ी चुनौती देखती हैं?
देखिए, इसमें आपको जरा थोड़ा दो कदम पीछे जाके ये देखना होगा कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं ये किस रुख पे हैं। हमने ये देखा है कि जब भी पाकिस्तान में एक कमजोर हुकूमत होती है और वो लोगों को डिलीवर नहीं कर सकती तो फौज जो है वो आगे आके ज्यादा हिस्सा लेता है पॉलिसियों में। जैसे हमने अभी राहिल शरीफ जब आर्मी चीफ थे, हमने ये देखा कि जहाँ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, हिंदुस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ या पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी हो, उसमें फौज एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता है, बल्कि बहुत सी पॉलिसी को भी डायरेक्शन देता है इसको बैलेंस करने के लिए कि भाई सिविलियन भी आगे बढ़े तो सिविलियंस को खुद डिलीवर करना चाहिए, उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए। तो जब आप ये देखते हैं कि एक करप्ट सिविल गवर्नमेंट हो जो डिलीवर भी ना कर सके तो फिर इस किस्म की इम्बैलेंस नजर आती है। जनरल बाजवा हो या जनरल राहिल शरीफ हो, आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में ताकतवर है और जो पॉलिसियों की तरफ आपने इशारा किया उनमें इनका दखल बहुत है। मगर इन दिनों में या पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान पे है या अमेरिका या हिंदुस्तान के साथ है, इनमें जो हमारी सिविल हुकूमत है और जो हमारे फौजी हैं वो तकरीबन एक ही बात सोच रहे हैं।
जनरल राहिल शरीफ के जाने से और जनरल बाजवा के आने से भारत को खुश होना चाहिए या स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहनी है?
वैसी बनी रहेगी, क्योंकि इसमें ना खुशी की बात है ना गम की बात है, ये एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन की बात है। राहिल शरीफ कोई घर से कोई पर्सनल पॉलिसी तो लेके नहीं आए थे पाक भारत ताल्लुकात में, ना बाजवा साहब लेके आए हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन है फौज वो अपने नजर से देखता है भारत को। साथ साथ ये भी कहना चाहिए, अगर जनरल बाजवा एक स्टेप आगे जाएं और जो इनकी मिलिट्री कमांडर्स DGMOs की जो बातचीत हर मंगल होती है इसमें कुछ तेजी लाए, और अगर ज्यादा ताल्लुकात कमांडर्स के बीच में जनरल बाजवा ला सकता है, और बल्कि इनकी तो मुलाकातें नो मैन्स लैंड में अटारी और वागा के बीच में भी एक दफा हो चुकी हैं, और इन्होंने खुद कहा था कि अच्छी मुलाकात हुई है। तो ये जो मिलिट्री कमांडर्स हैं इनको चाहिए कि रीच आउट करें, दोनों मिलें और बातचीत करें, क्योंकि ये एक दूसरे की लैंग्वेज है, वो समझते हैं।
पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और अब रुख छत्तीसगढ़ का। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीद जारी है, लेकिन सूबे की 1600 राइस मिलों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मिलों की हड़ताल का असर धान खरीदी पर पड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव सूबे के 14 लाख से अधिक किसानों पर पड़ेगा। सरकार ने राइस मिलों की हड़ताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की है, लेकिन हड़ताल करने वाले अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आलोक पुतल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में सरकार हर साल समर्थन मूल्य पर 70 से 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदती है, लेकिन इस बार धान खरीदी की शुरुआत के 2 सप्ताह बाद भी धान की मिलिंग नहीं हो पाई है। राज्य के 1600 से अधिक चावल की मिलों में हड़ताल है, और इन चावल मिलों के मालिकों का कहना है कि सरकार धान से चावल बनाने की प्रक्रिया के लिए उन्हें जो भुगतान करती है वह कम है। इसके अलावा चावल के बोरे के लिए उनसे लिया जाने वाला शुल्क भी अधिक है। इन चावल मिलों की हड़ताल का असर ये हुआ है कि अब सरकार के पास धान रखने की जगह नहीं बच रही है। राज्य सरकारी विपणन संघ का मानना है कि हालात ऐसे ही रहे तो धान बेचने वाले किसान मुश्किल में आ सकते हैं। संघ के महाप्रबंधक GS पैकरा कहते हैं,
आगे लंबा होगा। जो हमारा जो पूरा व्यवस्था है, अगर मिलर लोग हड़ताल समाप्त नहीं करते हैं तो जरूर प्रभाव पड़ेगा।
सरकार की इन्हीं मुश्किलों के कारण अब चावल मिलों पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में चावल मिलों पर छापामारी की जा रही है, और सरकार इन मिलों को सीलबंद कर रही है। रायगढ़ जिले में भी कुछ मिलों को सीलबंद कर दिया गया है, जबकि कई मिलों के मालिकों को चेतावनी दी जा रही है। जिले की कलेक्टर अलरमेल मंगई डी का कहना है कि सरकार अब किसी भी हालत में हड़ताल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।
इसके बारे में हमने सारे मिलर्स को कल भी बुलाया के हमने समझाए थे, और SP साहब भी साथ में थे, क्योंकि इसमें आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हो सकते हैं, और 3 महीने से 7 साल तक उनका जेल का भी इंप्रिजनमेंट का भी प्रावधान है।
लेकिन सरकार की चेतावनी का उल्टा असर हुआ है। शनिवार को राज्य के आधे से अधिक चावल मिल के मालिकों ने अपने मिल में ताला बंद करके उसकी चाबियां संबंधित सरकारी अधिकारियों को सौंप दी है। छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल का कहना है,
आज पूरे प्रदेश में राइस मिलर पे हमला कर दिया है, और मिलों पे छापेमार कार्रवाई, सील बंद, ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आज रायपुर जिले के सभी मिलर, रायपुर फूड कंट्रोलर को हमने अपनी चाबियां सौंप दी राइस मिलों की, क्योंकि मेरा धंधा है, मेरी मिल है, मुझे नुकसान हो रहा है, मैं नहीं चला सकता, तो आप उसको कैसे सीज कर सकते हैं।
चावल मिलों की हड़ताल और उसके खिलाफ सरकार की कानूनी कार्रवाई के इन दावों के बीच यह बात तो बहुत साफ है कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में अगर हड़ताल लंबी खिंच गई तो इस बार नई चावल की खेप बाजार में देर से तो आएगी ही। सरकार की चावल से जुड़ी तमाम तरह की योजनाएं भी प्रभावित होंगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
नरेंद्र मोदी सरकार के करेंसी नोटों पर बैन के फैसले के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक दलों ने सोमवार को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन इस बीच अलग अलग दल इस कार्यक्रम को अपने अपने तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने तो खुद को कार्यक्रम से अलग ही कर लिया है। दिलनवाज पासा से सुने ये रिपोर्ट।
मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के विरोध में विपक्ष द्वारा बुलाए भारत बंद से नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने खुद को अलग कर लिया है। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद कहते हैं,
हमारी पार्टी का शुरू से केंद्र सरकार के नोटबंदी के निर्णय का स्वागत करने का हम लोगों ने काम किया, और मुख्यमंत्री जी ने इसका स्वागत किया और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई दिया। देश के पैमाने पर जो बंद करने का विपक्षी दलों ने जो निर्णय लिया है उसमें हमारे दल का शुरू से स्टैंड था। नोटबंदी के खिलाफ जो भी कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम से जनता दल यूनाइटेड अलग रहेगी। आज हमारा पार्टी के रूप से अधिकृत यह बयान आया है।
वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नोटबंदी के लिए अपना समर्थन फिर से दोहराया है।
नोटबंदी का समर्थन कर दिया तो बहुत लोग राजनीतिक अर्थ निकालते रहिए। नोटबंदी के साथ
और हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि भाई इसके साथ अब बेनामी संपत्ति को भी हिट करिए।
उधर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो भारत बंद के बजाय सोमवार का दिन आक्रोश दिवस के तौर पर मनाएगी। पश्चिम बंगाल में वामदलों ने सोमवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नोटबंदी के विरोध में प्रखर रही हैं और आंदोलन तक की चेतावनी दे चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भी भारत बंद से बाहर रहने का फैसला लिया है। एक ट्वीट में ममता बनर्जी ने कहा, दिल्ली में विरोधी दलों की बैठक में बंद को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी, ना ही कोई फैसला किया गया था। हम कोई भी बंद का समर्थन नहीं करते। देश की जनता बेहाल है। मेरा सबसे अनुरोध है कि वह इस मुश्किल की घड़ी में लोगों का साथ दें। उधर तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राज्य समिति भी भारत बंद से बाहर रहेगी। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में ये स्पष्ट कर दिया था कि उनकी पार्टी बंद में शामिल नहीं होगी। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल भी सोमवार को विमुद्रीकरण के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद में शामिल नहीं होगी। बीजेडी ने केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले का भी समर्थन किया है। कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक में भारत बंद के दौरान सरकारी स्कूल और कार्यालय खुले रहेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित नहीं की गई है और सरकारी कार्यालय भी खुले रहेंगे। हालांकि भारत बंद के दिन कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदन बंद रहेंगे। कर्नाटक विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और सदन की कार्यवाही 29 नवम्बर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी सोमवार को राज्य में आक्रोश दिवस मनाएगी और इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड में विपक्षी दलों ने भारत बंद से दूर रहने का फैसला लिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अभी भारत बंद को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।
ये थे दिलनवाज पाशा और अब सुनिए खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। रियो ओलंपिक के रजत पदक और चाइना ओपन के विजेता भारत की पीवी सिंधु हांगकांग ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। गैर वरीयता के साथ खेल रही पीवी सिंधु ने कल सेमीफाइनल में हांगकांग की चियोंग नगान यी को 46 मिनट के खेल में 21-14 21-16 से हराया। उनके अलावा पुरुष एकल वर्ग में गैर वरीयता हासिल समीर वर्मा भी फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने डेनमार्क के यानो योर्गेनसन को 21-19 24-22 से मात दी। अब फाइनल में उनका सामना हांगकांग के लॉन्ग एंगस से और पीवी सिंधु का सामना चौथी वरीयता हासिल चीन ताइपे की ताई जू युंग से होगा। उधर मोहाली में कल से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने पहले दिन 8 विकेट खोकर 268 रन बना लिए थे। वहीं एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय कल दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 194 रन बना लिए थे। स्टंप के समय कल दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज स्टीफन कुक 81 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 383 रन पर समाप्त हुई और उसे पहली पारी के आधार पर 124 रन की बढ़त मिली। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 145 रन बनाए। अब दक्षिण अफ्रीका के पास 70 रनों की बढ़त है और उसके 4 विकेट बाकी हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे 4 देशों के इन्विटेशनल हॉकी टूर्नामेंट में कल भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड से 3-2 से हार गई। इस हार के साथ ही भारतीय टीम फाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गई।
कार्यक्रम खात्मे की तरफ पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की मौत के बाद देश में 9 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। फिदेल कास्त्रो का शनिवार को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार एक निजी समारोह में हवाना में होगा। दुनिया भर के नेता फिदेल कास्त्रो को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक न्याय की एक मजबूत आवाज थे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक बर्बर तानाशाह बताते हुए कहा है कि उन्होंने अपने ही नागरिकों का दशकों तक दमन किया। सीरिया में सरकारी मीडिया का कहना है कि सरकारी सैन्य बलों ने एलेपो में विद्रोहियों के कब्जे वाले सबसे बड़े जिले को नियंत्रण में ले लिया है। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो मैनेजर थे हेमंत कुशवाहा। फिडेल कास्ट्रो से जुड़ी हुई तस्वीरें, समाचार विश्लेषण और रेडियो रिपोर्ट देखें bbchindi.com पर। नमस्कार।